पृष्ठ संख्या 87, सौंदर्य चित्रण, वह संधि और नखशिख। सरोज स्मृति सौंदर्य अनुभूति की कविता नहीं है, वह पुत्री के निधन से संबंधित कवि पिता की आत्म अभिव्यक्ति है। यह और बात है कि इसमें निराला एकाधिक पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के प्रति न केवल सजग बल्कि एक प्रकार से सन्नद्ध रहे हैं। सरोज का सौंदर्य चित्रण इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह चित्रण भारतीय मनस की संस्कारगत रूढ़ पर सीधे सीधे आघात करता है। निराला इस प्रसंग में हद दर्जे की तटस्थता बरतते हैं। ना केवल वह अपनी पुत्री के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, वरन वह संधि और यौवन आगमन का भी प्रगल्भतापूर्ण चित्र उरेहते हैं। भारतीय कविता में शायद यह अकेला उदाहरण है, यों पुत्री के शैशव काल से लेकर उसके विवाह योग्य हो जाने तक की कथा के क्रम में यह प्रकरण आता ही है, और कथा दृष्टि से इस चित्रण के औचित्य को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं है। नायिका के सौंदर्य का चित्रण रीतिकालीन कवियों का अति प्रिय विषय रहा है, विशेष रूप से वया संधि और यौवन आगमन के चित्र उन्होंने बड़ी रसिकता के साथ उरेहे हैं। रीतिकाल से पहले भी यौवन आगमन के चित्र हिंदी कविता में मिलते हैं, जैसे विद्यापति का पद सैसो सैसो जौवन दुहि मिल गेल। किंतु रीति काल तो मानो नायिका भेद का विश्वकोश ही है। पद्माकर का यह सवैया देखिए, ऐ अलि जा बलि के अधरान में आन चढ़ी कुछ मधुराई सी, ज्यों पद्माकर माधुरी त्यों कुछ दोवुन की बढ़ती उनई सी, ज्यों कुछ त्यों ही नितंब बढ़े कछु ज्यों ही नितंब त्यों चातुराई सी, जानी न ऐची चढ़ा चढ़ी में कहीं धो कटबीह की लूटी लई सी। बिहारी का भी एक दोहा गैरतलब है, अपने दल के जान कै जोबन रपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। रीतकालीन कवियों की दृष्टि नायिका के विकसित होते शरीर पर ही अधिक रहती है, यद्यपि पद्माकर चातुर्य और बिहारी मन के भी विकसित होने की बात भी कहते हैं। आधुनिक काल तक आते आते स्थूल मांसलता का क्षरण होने लगता है और उसके स्थान पर अंग दीप्ति तथा भावनात्मक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगता है। भारतेंदु का यह छंद देखें, शिशुताई अजौन गई तन ते तवु जोबन ज्योति बटोरे लगी, सुनिकै चर्चा हरिचंद की कान कछुक दय भौं मरोरे लगी, बस सासु जेठानिन सो पियते दूर घूंघटी में दृग जोरे लगी। पृष्ठ संख्या 88, दुलही उलही सब आंगन तय दिन द्वैते पीयूष निचोरे लगी। इस सवैया में बाल्यावस्था में विवाहित कन्या के यौवन आगमन का प्रकरण है, अतः यहाँ अति रसिकता का प्रश्न थोड़ा धुंधला भी हो जाता है। मैथिली शरणगुप्त ने सिद्धराज में इस प्रसंग को और संक्षिप्त तथा संकेतात्मक बनाया है। एक क्षण जीवन में ऐसा भी आता है, एक दृष्टि में जो नई सृष्टि रच जाता है, यौवन का बोध अकस्मात ही तो होता है, मुग्धा एक पल में ही मध्या बन जाती है। गुप्त जी की वर्णनात्मक प्रकृति में कवि है और मर्यादावादी भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने सांकेतिक कथन अथवा शॉर्टकट का मार्ग अपनाया। यद्यपि उनके वक्तव्य में एक निजी सौरस्य है ही, निराला भी सरोज के यौवन आगमन का चित्र संक्षिप्त तथा सांकेतिक रूप में उरेहते हैं, किंतु वे वास्तविकता से कतराते नहीं। उनका रेखाचित्र अमांसल होते हुए भी यथेष्ट किंतु सुरुचि के साथ मांसल है और यौवन आगमन के प्रतिकर यथार्थ को रूपायित करने वाला है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता का सास्वर ज्यो माल कौस नौ वीड़ा पर नैस स्वप्न ज्यो तू मंद मंद फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार कापा वन कांपा दिक प्रसार, उन मनन गुंज सज हिला कुंज तरु पल्लो कलिदल पुंज पुंज वह चली एक अज्ञातवात चुमती के समृद्ध नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। निराला के द्वारा अपनी पुत्री सरोज के यौवन आगमन के इस चित्र के वैशिष्ट्य को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना उपादेय हो सकता है। एक, निराला ने सरोज की वह संधि का, उसके यौवन आगमन का चित्रण प्राचीन कवियों की भांति विलास लालसा जगाने के अंतर्निहित मंतव्य के अंतर्गत नहीं किया है, जिसके अवशेष मैथिलीशरण गुप्त की उद्धृत पंक्तियों में भी पाए जा सकते हैं। रान कदे के प्रति पहले खंगार और बाद में सिद्धराज का आकर्षित होना। निराला सरोज के व्यक्तित्व के विकास क्रम में उसके पृष्ठ संख्या 89 यौवन आगमन का चित्रण करते हैं। यहाँ एक कथा है जिसमें क्रमिक विकास के निदर्शन की अपनी शर्त होती है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार डॉट 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 डॉट। यह स्वतंत्र सौंदर्य चित्रणात्मक मुक्तक कविता नहीं है, कवि की अपनी पुत्री के लघु जीवन की कथा का एक अंग मात्र है, जिसका उद्देश्य विकासात्मक चित्रण को वास्तविक एवं जीवंत बनाना है। दो, मांसलता यहाँ भी है, किंतु रीतिकालीन कवियों की भांति कामांगों की बढ़ोतरी में बेबाक उल्लेख के रूप में नहीं। निराला ने इस प्रसंग में कलात्मक सांकेतिकता का उपयोग करते हुए अपने अप्रतिम रचनात्मक संयम का परिचय दिया है। ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। क डॉट 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 कुंज तारुण्य सुघर लाई लावण्य भार थर थर कांपा माल कौश नौबीड़ा पर खा कापी भव निज आलोक भार गा बह चली एक अज्ञातवात चुमती के समृद्ध नवल गात देखती सकल निष्पलक नयन। प्रथम उद्धरण में यौवन आगमन जनित नवीन मांसलता बिहारी के शब्दों में स्तन मन नयन नितंब का इजाफा की ओर संकेत है, उपमा की परंपरा से हटकर है। देह यष्टि को बीड़ा की उपमा देते हुए नई मांसलता को गंभीर राग मालकौश अति स्थूल को अति सूक्ष्म से उपमित करना निराला की परिष्कृत रुचि का परिचायक एक अभिनव प्रयोग है। दूसरे उद्धरण में अपनी अभिनव रूप दीप्ति को देखकर चकित होना अज्ञात यौवन तथा स्वयं मुग्धा नायिकाओं के बीच की मनः स्थिति का द्योतक है, जो वयः संधि के क्षणों में सभी बालिकाओं के लिए सहज स्वाभाविक है। तीसरा उद्धरण नायिका में कामोद्भव का स्पष्ट संकेत देने वाला है। अज्ञातवाद का बहाना कामोद्भव होना ही है, जो प्रथम अनुभव होने के कारण बालिका या नायिका को चकित करता ही है। प्रकट है कि निराला ने सांकेतिक रूप से वयः संधि और यौवन आगमन का एक पूरा चित्र उरेह दिया है। स्थिति की मांग के अनुरूप वह खुले रूप से परंपरागत कविताओं की भांति उत्तेजक अवश्य नहीं है, किंतु अपनी कलात्मक सांकेतिकता में वह अतिशय सम्मोहक और सुरुचिपूर्ण है। तीन, इस पूरे चित्रण में निराला का पितृत्व अपने अस्तित्व का परिचय तथा प्रसंग देता रहा है। पहले बाल की केलियों का प्रांगण का संदर्भण और प्रसंगांत में समझा मैं तेरा जीवन कहकर पिता के दायित्व बोध का आत्मस्वीकरण इसके साक्ष्य हैं। इन सीमांतों के बीच निराला का पितृत्व एकाधिक बार उभरा है। पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। का माँ की मधुरिमा व्यंजना भर पृष्ठ संख्या 90 हर पिता कंठ की दीप्त धार डॉट 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 मेरे स्वर की रागनी वहिन खा जाना वस्पिक बालिका प्रथम पल अन्य नीड़ में जब सक्षम होती उड़ने को अपना सर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। जिस रचनात्मक संयम और संतुलन का परिचय निराला ने यहाँ दिया है वह अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। ना यौवन आगमन के चित्र में कोई कमी है और ना ही पितृत्व की सजग उपस्थिति में। सौंदर्य चित्रण का दूसरा पक्ष नखसिख की परंपरा से संबंधित है। रीतिकालीन कवियों ने नायिका के नखसिख निरूपण में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का एक बड़ा अंश खर्च किया। वस्तुतः वह सामंत युगीन कवियों की व्यवस्था भी थी, क्योंकि उनके आश्रयदाता उनके अति श्रृंगारिक एवं विलासोत्तेजक छंदों पर उन्हें पुरस्कृत करने में सामान्य से अधिक उदार हो जाया करते थे। रीतिकालीन कवियों की दृष्टि में नायिका कुछ इस प्रकार की होती थी। लाज भरी, मांग भरी, सुंदर, सुहाग भरी, राग भरी, रति में पिया की सुखदाई का लाजरत रूप खरी, सील भरी सौ गुने है, गुण गान आगरी करत हाई भाई का, मौन कही कहत बिलोकत ही जासु अंग, प्रगटे अनंग रस रास उपजाई का, नयन मन भाई का मनोरथ सहाय का, सुचित चोपचाई का बखाने ताहि नायिका। रीतकालीन कवियों की नायिका विषयक अवधारणा मोटे तौर पर यह है कि वह आकर्षक हो, कामोत्तेजक हो और नायक के मनोरथ को संपूर्णतः पूर्ण करने वाली हो। रीतकालीन कवियों ने इसी दृष्टि से नायिकाओं के समूचे शरीर, पैरों के नाखून से लेकर बेड़ी तक का बड़ा रस लेते हुए चित्रण किया है। नमूने के लिए कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। कोमल कमल के गुलाबन के दल के सु जात गड़ी पायन बिछौना मलमल के, पद्माकर। पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिंजत जाए, बिहारी। चली है क्यों चंद मुखी कुंचन के भार भये, कंचन के भार ही लचक लंक जात है, केशव। थोरिये वयस विलास लसे कुछ टेढ़ी चितौनी पे सोधी चले पथ, कमरे अंग करे रे कुचावृत लाज लची गुण ऊंचे मनोरथ देव। स्पष्ट है कि रीतकालीन कवियों ने नारी को भोग्या के रूप में चित्रित करते हुए उसकी मांसलता पर स्वयं को अधिक केंद्रित किया है। पृष्ठ संख्या 91। यो माधुर्य और अंग दीप्ति के कुछ बड़े ही मनोहर चित्र रीतकालीन कवियों ने दिए हैं, पर कुल मिलाकर उनका सौंदर्य चित्रण मांसल तथा विशालोत्तेजक ही कहा जा सकता है। नारी के अंग प्रत्यंग के चित्रण या नक्श चित्रण की इस परंपरा ने आधुनिक काल में नया रूप ग्रहण किया। यह बदलाव भारतेंदु युग से ही लक्षित होने लगता है, किंतु इसकी पूरी चरितार्थता छायावादी कविता में देखने को मिलती है। प्रसाद को सौंदर्य और प्रेम का कवि कहा जाता है। उनके विरह काव्य आंसू में नक्शिक की परंपरा का बदला हुआ सुरुचिपूर्ण रूप पहली बार लक्षित होता है। उन्होंने इस कृति में नायिका के अंग प्रत्यंग का चित्रण न करके उसमें चुनाव किया है और बाहों तथा मुखमंडल का ही सौंदर्य अंकन किया। केश, भौहें, बरौनियाँ, अधरोष्ठ, नासिका, दंत पंक्ति, कान, कपोल, ये ही चित्रण के विषय रहे हैं। दो छंद देखे जा सकते हैं। एक विद्रुम सीपी सम्मुट में मोती के दाने कैसे है हंस न सुख या फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे। दो काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण में भी प्रसाद की यही दृष्टि रही है। इस विशेषता के साथ कि यहाँ अमूर्तन तथा मानसिकता के अभिव्यंजन की नवीनता के भी दर्शन होते हैं। अमूर्तन से मेरा तात्पर्य ऐसे चित्रण से है जिसमें पाठक को सौंदर्य का बोध तो उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, किंतु उसके आगे कोई स्थूल बिंब नहीं उभरता। मसलन ये पंक्तियाँ देखें। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वयार। दो कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और उस पर पड़ती हो शुभ नवल मधुरा कर मन की साध, हसी तब मद विह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अबाध। दोनों उदाहरणों में सौंदर्य का अमूर्तन हुआ है। वस्तुतः छायावादी कविता की पहली पहचान उसकी सूक्ष्मता या अमूर्तता के नाते ही हुई थी, जिसे आरंभ में समझ ना पाने के कारण प्राचीन कविता के स्थूल चित्रण के आदि समीक्षक छायावाद का मखौल उड़ाने लगे थे, या फिर उसे रहस्यवाद में अंतर्मुक्त करने लगे थे। प्रसाद संवेदनशील होने के साथ साथ चिंतक भी थे। दूसरे उद्धरण तीसरी पंक्ति में उन्होंने सौंदर्य तात्विक इस चिर अनंत समस्या की, सौंदर्य विषयगत वस्तुगत होता है या विषयीगत आत्मगत, का समाधान इस रूप में दे दिया है कि सौंदर्य विषय या वस्तु में ही होता है, किंतु उसकी चरितार्थता तभी होती है जब वह मन की साध का आलंबन बने। आंसू में वह यह बात कुछ अधिक स्फुट रूप में कह चुके थे। उनका सुख नाच उठा है यह दुख द्रुम दल हिलने से, श्रृंगार चमकता उनका मेरी करुणा मिलने से। कामायनी की उक्ति एक विचार की भी स्थापना करती है, जबकि आंसू का कवि अपनी पीड़ा पृष्ठ संख्या 92 के भोग में ही लीन है। विचार कोई खोजना चाहे तो वह उसका सिर दर्द है। सौंदर्य अनुभव संबंधी प्रसाद की इस मान्यता की निराला ने राम के शक्ति पूजा की इन पंक्तियों में पुष्टि की है। डॉट 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 ज्ञात छवि प्रथम सवीय जानकी नयन कामनीय प्रथम कंपन तुरीय। सीता को अपने सौंदर्य का बोध तथा उसकी सार्थकता का अनुभव तब होता है जब वह राम के नेत्रों में अपने प्रति अनुरक्त की भाषा पढ़ लेती हैं। सौंदर्य चित्रण में मानसिक पक्ष का शामिल किया जाना कोई नई बात नहीं है। रीतकालीन कवियों ने भी नायिका के आंतरिक गुणों का चित्रण विपुल रूप में किया है। प्रसाद का वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने सौंदर्य संबंधी एक सैद्धांतिक बात कविता में श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण के प्रसंग में कही। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मध पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का दैहिक सौंदर्य उसके हार्दिक सौंदर्य का प्रतिफल है या उसकी प्रतिच्छवि है। कालिदास ने ठीक उल्टी यद्यपि अंतिम विचार में एक जैसी बात कही थी कि व्यक्ति का आनंद उसके हार्दिक गुणों का संकेतक होता है, शैली निषेधात्मक है। नातदृशा आकृत विशेषा गुणा विरोधनो भवन्ति यद उच्यते पार्वती पाप वाप वृत्तये ना रूपमित्य व्यभिचार तद्वचा। कुमार संभवम प्रसाद यही बात शुद्ध सैद्धांतिक रूप में लज्जा सर्ग में कहते हैं। यहाँ नारित्व के विशिष्ट गुणों का निरूपण और चित्रण किया गया है, उनकी मान्यता है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद मन की साध के महत्व की बात यहाँ भी कहते हैं। अभिलाषा के सामने प्रकट है कि प्रसाद की दृष्टि में पुरुष नारी के दैहिक सौंदर्य से ही सदैव और सर्वत्र प्रभावित नहीं होता। उसकी पूर्ण अनुरक्ति में नारी के आंतरिक गुणों नारित्व का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। निराला ने सरोज के सौंदर्य चित्रण में बहुत कुछ प्रसाद की ही परंपरा को अपनाया है, बल्कि उसे अपनाते हुए उसे और विकसित किया है। नख शिख की मांसलता प्रधान स्थूल चित्रण की परंपरा के प्रतिषेध के निमित्त प्रसाद ने जो मुखमंडल के सौंदर्य को ही चित्रित करना अलम समझा था, निराला की भी दृष्टि लगभग वही रही। यद्यपि किंचित वैशिष्ट के साथ सौंदर्य को नारी की मानसिकता से जोड़ने की जो बात प्रसाद ने कही थी, उसे निराला ने समूचे रूप में अपनाया। हाँ, प्रसाद के अमूर्तन का अनुकरण उन्होंने नहीं किया। कारण स्पष्ट है, निराला चित्रणात्मक प्रतिभा के कवि थे, अतः जहाँ अमूर्तन की गुंजाइश थी, निराला ने वहाँ भी बिंबात्मक झलक देने का प्रयत्न किया। एक उदाहरण से ये विशेषताएं समझी जा सकेंगी। निराला सरोज की दृष्टि की विशिष्टता का चित्रण करते हुए लिखते हैं, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार पृष्ठ संख्या 93 ज्यों भोगवती उठी अपार उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील जल टलमल करता नील नील पर बंधा देह के दिव्य बांध छलकता दृगों से साध साध है। नेत्रों के सौंदर्य और कटाक्ष के चांचल्य का वर्णन रीतिकालीन कवियों ने ही नहीं, पहले के विद्यापति और सूर आदि कवियों ने भी बड़े सरस रूप में किया है। किंतु जिस साधव एवं संयम की बात निराला कहते हैं, वह शायद हिंदी कविता में पहली और अनूठी उक्ति है। पुराने उपमानों खंजन मीन कमल आदि की चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता। निराला एक सर्वथा मौलिक अप्रस्तुत पाताल गंगा के नील निर्मल वेगवती धार का प्रयोग करते हैं, जो सरोज के भीतरी संयम और संतुलन का परिचायक है। सधे रूप में प्रत्येक के प्रति दृष्टिपात और फिर भी उनकी नीली विमोहकता, यह चित्र निराला ही उरेह सकते हैं। नेत्रों की नीलिमा का चित्रण पंत ने भी किया है। तुम्हारी आँखों का आकाश मृगे छिड़ी नील आकाश, खो गया मेरा खग अनजान। प्रगीतों में नील झील से नयन, जैसे प्रयोगों का बाहुल्य रहा है। निराला ने उस नीलेपन को दृष्टि से जोड़ा है और उसके लिए एक नया अप्रस्तुत दिया है, जो सौंदर्य विधायक होने के साथ साथ पवित्रता व्यंजक भी है। चित्रण में निराला की लेखनी कितनी सधी है, यह उसका एक रमणीक प्रमाण है। प्रसाद यदि ऐसा चित्रण करना चाहते तो अमूर्तन से बाहर नहीं जा पाते। उनका एक प्रायः ऐसा ही चित्र देखें, दृष्टि फिर गई तुम्हारी, किया सृष्टि ने मधुधार में स्नान। बह चली मंदाकिनी मकरंद भरी, करती कोमल कलगान झरना। कहना न होगा कि इन पंक्तियों में निदर्शना अलंकार के अतिरिक्त चित्रणात्मक सौंदर्य के नाम पर कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, निराला के नक्षिक चित्रण की प्रसादीय स्थापना का अनुसरण करते हुए अपने वैशिष्ट्य का भी परिचय दिया है। कामायनी में श्रद्धा की गति के सौंदर्य पर कवि का ध्यान नहीं गया। निराला केवल चार पंक्तियों में सरोज की मांसल देहयष्टि और उसकी गति संकेतित कर देते हैं। डॉट 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 लावण्य भरा थर 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 डॉट डॉट ज्यों माल कौश नौ बीड़ा पर नए स्वप्न ज्यों तू मंद मंद कांपी भर निज आलोक भार। नायिका की मंथर गति के लिए नए स्वप्न एक वायवी उपमान है। गति परक विशेषण मंद मंद पूरा चिन्ह उरेह देता है पूरी शालीनता के साथ। इस चित्रण की शालीनता एवं परिष्कृत अभिरुचि को रेखांकित करने के लिए इसकी सक्षमता में द्विजदेव का पृष्ठ संख्या 94 यह सवैया दृष्टव्य है। चित चाहे अबूझ कहे कितने, छवि छीनी गयंदन की टटकी, कवि केत कहें निज बुद्धि उदय, यही सीखी मरालन की मटकी। द्विजदेव तू ऐसे कुतर कन में, सब ही मत यों ही फिरे भटकी, वह मंद चले किन भोरी भटू, पग लाखन की अखियां अटकी। गति को लेकर इस उद्भावना में मौलिकता है और कथन भंगिमा में धार भी है, किंतु कुछ मिलाकर वह विलास वृत्ति का ही पोषण करने वाली है। उदात्तता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। महादेवी ने गति के पुराने उपमानों हंस गज आदि से हटकर एक नया उपमान दिया था, भरे मेघों सी धीमी चाल। किंतु मुझे तो यह पुरातन अप्रस्तुतों से अधिक सुरुचिपूर्ण लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी गर्भवती नायिका का चित्रण किया जा रहा हो। निराला ने अत्यंत संवेदनशील सांकेतिकता के साथ सरोज के सौंदर्य अनुषंगों को अपनी लेखनी से छुआ है। अधरोष्ट की लालिमा उसकी झलक से किंचित रंजित शुभ्र दंति पंक्ति बिजली की चपल कौंध का होठों के बीच फंसकर रह जाना, केवल एक पंक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का ऐसा प्रगाढ़ बंध अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। निराला अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर पुरोहित की वेशभूषा में पगड़ पगड़ी बांधकर बैठते हैं। सरोज उनके इस रूप को देखकर हौले से हंस पड़ती है। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, और यह मंद मुस्कान निराला को एक दूसरे ही लोक में खींच ले जाती है, वह लोक जो उनकी स्वर्गीय प्रिया का है। वह थोड़ी देर के लिए लोकांतरित हो जाते हैं। यह सौंदर्य चित्र भी अद्भुत है और उनकी प्रतिक्रिया भी। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में इससे मिलता जुलता बिंब दिया था। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन भरे रहते हो क्यों, अधरों में मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी या तरल हंसी अपनी पीते रहते हो क्यों। यह बिंब भी अपने स्थान पर अप्रतिम है, किंतु चंचल बिजली का होठों के बीच सहसा ही फंस कर रह जाना अलग ही बिंब है, क्योंकि इससे होठों की लालिमा के साथ उज्ज्वल दंत पंक्ति पर उसकी झलक तथा उसका चांचल्य इसे एक संश्लिष्ट बिंब बना देते हैं। ऐसी सघन संश्लिष्ट बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी सघन संश्लिष्टता बहुत कम देखने को मिलती है। प्रसाद ने मुस्कान के अनेक बिंब आंसू लहर और कामायनी में उरेहे हैं। यथा एक विकसित सरसी जवन वैभव मधुषा के अंचल में उपहास कराए अपना जो हंसी देख ले पल में आंसू दो और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम। पृष्ठ संख्या 95 अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम का मायनी 3 श्याम नभ में विधु किरण सा फिर वही हास। अधिकतर प्रसाद ने अलंकरण का सहारा लिया है जो अमूर्तन के शिल्प का ही एक पक्ष है। श्रद्धा के रूप चित्र में भी वह अमूर्तन ही की विधि अपनाते हैं। हंसी का मंद विह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद। प्रसाद वस्तुतः अमूर्तन के ही कवि हैं और उनका निजी वैशिष्ट्य भी है। निराला को अमूर्तन की कला नहीं आती थी अथवा यह चित्रण विधि उन्हें प्रिय नहीं थी, यह एक अलग विषय है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि निराला में चित्रण की विशिष्ट प्रतिभा थी और चित्रणधर्मी कवि अमूर्तन में अधिक विश्वास नहीं करता। वे अभिव्यक्ति के ही स्तर पर अविधावादी नहीं थे। चित्रण के क्षेत्र में भी उनका यह वैशिष्ट्य बना रहा है। सरोज के कंठ स्वर की विशिष्टता को निराला तार्किक संगति के साथ निर्दिष्ट करते हैं। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर माकी मधुरिमा व्यंजना भर हर्पिता कंठ की दीप्त धार उत्कलित रागिनी की बहार। सरोज के कंठ स्वर में ओज ओज पिता के कंठ की देन माधुर्य माँ की विरासत। कामायनी की श्रद्धा में विरासत का संदर्भ इतना मुखर नहीं है यद्यपि उसे काम और रथ की संतान बताया ही गया है। कामायनी की कथा पौराणिक है अतः प्रसाद निजी स्तर पर उसमें शामिल नहीं है। सरोज स्मृति में रचनाकार अपनी रचना में शामिल है बल्कि अधिवक्ता और आरंभ से अंत तक भोक्ता होने के कारण वही काव्य नायक भी है। इसलिए निराला के चित्रण में यथा अर्थवत्ता का विशेष आकर्षण है। प्रसाद ने श्रद्धा के स्वरात्मक माधुर्य की ओर कई बार संकेत दिए हैं। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार डॉट 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 सुन मनु ने यह मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद। प्रसाद के चित्रण में कलात्मकता का वैसद्य देखा जा सकता है। रीतिकालीन कवियों ने तो पिक बैनी जैसे विशेषण जोड़कर ही छुट्टी पा ली थी। प्रसाद ने स्वर माधुर्य को व्यवहारिक स्तर पर व्यंजित किया। निराला की विशेषता यह है कि उन्होंने उसे यथार्थपरक पृष्ठभूमि दी। निराला के सौंदर्य चित्रण में यह भी अलग से रेखांकित करने वाली बात है। निराला के सौंदर्य चित्रण की एक उल्लेखनीय विशेषता सरोज के आकर्षक व्यक्तित्व को पारिवारिक सामाजिक संदर्भों से जोड़ना भी है। ये पंक्तियाँ देखे परिचय परिचय पर खिला सकल नभ पृथ्वी द्रुम कलि किस लय दल। पृष्ठ संख्या 96 यहाँ नभ पृथ्वी द्रुम कलिका और किसलय सरोज से जुड़े विभिन्न संबंधों के परिचायक और प्रतीक हैं। इससे पूर्व की पंक्तियों का संदर्भ लेने से प्रतीकात्मकता स्पष्ट हो जाएगी। फूटी ऊषा जागरण छंद कापी भर निज आलोक भार कापा बन कापा दिक प्रसार। कन्या जब युवावस्था की दहलीज पर आ खड़ी होती है तो उसका प्रभाव परिवार के बड़े बूढ़ों पिता निराला जी के संदर्भ में तक सीमित नहीं रहता। उस सम्मोहन या कि अनुभव से वह सभी जुड़ते हैं जो पिता पक्ष के लोग होते हैं। नभ जो मातृपक्ष पृथ्वी के लोग होते हैं जो बंधु बांधव भाई आदि द्रुम होते हैं जो सहेलियां होती हैं कलि तथा वह जो निर्विकल्प रूप से जुड़ते हैं जो आसपास के परिचित किशोर वय वाले पुराने बाल बंधु किसलय दल होते हैं। फिर ये प्रतीक सरोज के व्यक्तित्व की इस विशिष्टता को भी रेखांकित करते हैं कि वह इन सभी के साथ यथोचित तथा मर्यादित व्यवहार करने में सक्षम है। यह संकेत सरोज की दृष्टि की निर्मलता के चित्रण में ऊपर लिखित पंक्तियों के ठीक बाद में मिल जाता है। पर बंधा देह के दिव्य बांध छलकता दृगों के साथ साथ इस व्यापक संकेतशीलता की कलात्मक सार थकता के विचार से निराला ने बाल्यावस्था की दहलीज को पार करती हुई सरोज को जागरण के सम्मोहन से भरी उषा का रूप दिया है। क्योंकि उसका अरुण आलोक सर्वत्र छा जाता है, आकाश में धरती पर सभी उसकी अरुणिमा में नहा उठते हैं। द्रुमकल किसलय। कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का भी चित्रण व्यापक संदर्भों में हुआ है, किंतु वहाँ पारिवारिक सामाजिक परिवेश नहीं है। कामायनी के कथा मंच पर जब वृद्धा पहली बार अवतरित होती है तो वह उस युवती के रूप में होती है जो किसी पुरुष के प्रणयात्मक या विलासात्मक आकर्षण का केंद्र बन सकती है। मन को अपना परिचय देते समय वह केवल संकेत करती है, पिता की हूँ प्यारी संतान। बाद में काम सर्ग में ज्ञात होता है कि वह काम और रथ की भोली भाली संतान है, जिसे उन दोनों पिता और माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था और जिसके व्यक्तित्व के सात्विक एवं रचनात्मक लक्षणों के वह साक्षी रहे हैं। पारिवारिक अथवा सामाजिक अनुषंग यहाँ अनुपस्थित है। उनका होना संभव भी नहीं था, क्योंकि पौराणिक प्रसंग वास्तविक जीवन की छोटी छोटी नगण्य बातों से ऊपर उठकर किसी बृहत्तर सच्चाई की ओर संकेत करने वाले हुआ करते हैं। कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य के सम्मोहन का चित्रण विराटता के स्तर पर हुआ है। मन का यह संबोधन यहाँ प्रासंगिक है। कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान, लता विरुद्ध दिया करते जिसे छायादान। बस ही तो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद, एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद। वासना सर्ग। वासना सर्ग में तथा श्रद्धा सर्ग में भी इस प्रकार की अनेक उक्तियाँ मिलती हैं। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा अपनी जगह है और सरोज अपनी जगह। श्रद्धा देव स्त्रीय चरित्र है, जबकि सरोज नितांत साधारण मानवी, बल्कि मानवी बनने से पहले की किशोरा अवस्था में चूक जाने वाली, पृष्ठ संख्या 97। एक सुशील सुंदर किंतु भाग्यहीन लड़की। शायद ही ऐसी कोई लड़की साहित्य में दूसरी हो, इसलिए जहाँ हम श्रद्धा को सौंदर्य की देवी और शाश्वत नारीत्व के प्रतीक के रूप में अपना आदर भाव अर्पित करते हैं, एक नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से फूट प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। वहाँ सरोज निराला के साथ ही हमारे जीवन का एक ऐसा विलाप गीत बनकर रह जाती है जिसकी अनगूंज कभी समाप्त ना हो सकेगी। ऐसी निदारुण करुणा के क्षणों में शायद प्रत्येक पिता यही कहता होगा, हो इसी कर्म पर वज्रपात करने गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण। श्रद्धा नित्य यौवन की छब से दीप्त शाश्वत नारी है या शाश्वत नारित्व यौवनवती का प्रतीक है। सरोज इसके विपरीत एक ऐसा सौंदर्य कुसुम है जो समय से पहले कुंभला जाता है और दंतच्युत होकर धूल में मिल जाता है। सरोज की मानवीय त्रासदी, श्रद्धा की दार्शनिक कामदी श्रद्धा और मन का अंत में समरस हो जाना से कहीं अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वह हमारे लिए अधिक अनुभव गम्य है। सरोज स्मृति में निराला के सौंदर्य चित्रण के प्रसंग में एक और विशिष्टता रेखांकित करने योग्य है। पुत्री के यौवन आगमन तथा उसके सौंदर्य के चित्रण को लेकर निराला ने निर्वैयक्तिकता की दृष्टि से जो ख्याति या रूढ़िवादी दृष्टि से जो कुख्यात अर्जित की है, उसमें उनकी ये पंक्तियाँ कुछ और जोड़ती हैं। तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर्मे तेरा प्रिय कवि। इन पंक्तियों से पहले सरोज के वयह संधि पार करने और उसके सौंदर्य आकर्षण के चित्रण के साथ उसके विवाह योग्य होने की बात कही गई है। परवर्ती पंक्तियों में निराला सरोज के भीतर सद्या उदित काम चेतना के साक्षी बनते हैं। बीच की ये दो पंक्तियाँ जहाँ निराला के पितृत्व की अपनी पुत्री के पद स्वाभाविक सौंदर्य संस्था की व्यंजक हैं, वहीं वह उनकी काव्य जनोचित स्वाभाविक अनुरक्त की भी संकेतक हैं। निराला ने कविता के आरंभ में दिवंगता सरोज के लिए गीते संबोधन का प्रयोग किया है। गीते मेरी तजरूप नाम और सरोज के विवाह के प्रसंग में भी वह दिवंगता पत्नी को संबोधित करते हुए सरोज के प्रति अपनी गहरी अनुरक्ति को अभिव्यक्ति देते हैं। मेरे वसंत की प्रथम गीत गाया स्वर्गीया प्रिया संग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही। पृष्ठ संख्या 98। रूढ़िवादी समीक्षक इसे मानसिक विकृति प्रवर्जन कह सकते हैं। निराला ऐसे लोगों से सरोकार रखना भी नहीं चाहते थे, बल्कि वह अपनी सड़ी गली मनोवृत्ति पर आघात करना चाहते थे। यदि सरोज अपनी सुंदरता तथा पुत्री होने के नाते निरालो को यहाँ तक प्रिय हो गई कि वह कवि के कुछ गीतों का वर्ण विषय गीते जिसे गाया या कविता में चित्रित किया हो बन गई, तो इसमें कलात्मक विकृति के लिए कहाँ गुंजाइश है। कवि तो अपना कथ्य अपने अनुभूय परिवेश से ही ग्रहण करता है। अब यह और बात है कि कवि में सच्चाई को अभिव्यक्त देने का कितना साहस है। विवाह प्रसंग से संबंधित उक्ति का ताना बाना फंतासी का है, जिस पर आगे विचार किया जाएगा।